हेलो दोस्तों,
मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप सुन रहे हो मेरा पॉलिटिकल पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन 2019 के डेट्स बता दिए हैं और आज से आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये 11 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगा इलेक्शन और सेकेंड वीक ऑफ मई में ख़त्म हो जाएगा एंड 23 मई को उसका काउंटिंग हो जाएगा और उसके बाद नया सरकार का गठन होगा। तो आपने ये भी सुना होगा कि आज नॉर्थ साइड में बहुत सारे जगहों पे बीजेपी के पोस्टर्स लगे थे, जहाँ पे अभिनंदन हो या फिर जेट MiG-21 हो या जो भी पुलवामा अटैक के बाद जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है सेकेंड वाली, उससे रिलेटेड काफ़ी पोस्टर लगाए गए थे। बीजेपी का वहाँ पे पूरा का पूरा श्रेय लिया जा रहा था बीजेपी द्वारा। तो ये सारा जो है खर्चा किया हुआ वो आज उतारना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने सीधा सीधा बोला है कि जो भी ये चल रहा है वो गलत है। जो सैनिक है या जो आर्मी है उसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। तो उसका जो फटकार है वो सही है और मैं समझता हूँ कि कल सुबह तक बीजेपी ने तो उसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए और वो सारे पोस्टर्स हटा देने चाहिए। दूसरा चीज़ तो ये है कि जो पेड मीडिया है उसके ऊपर भी अभी इलेक्शन कमीशन नज़र रखेगी। अब तक तो मीडिया ने सीधा सीधा एक एग्रेसिव स्टैंड लिया था और जो भी नेशनलिज्म या सोडो नेशनलिज्म हम उसको बुलाएंगे का जो इशू था वो बहुत गरमाया हुआ था। बीजेपी ने पहला कोशिश किया कि राम मंदिर के इशू पे कुछ हो सकता है क्या, देखे बहुत सारा संतों का जमावड़ा आपने देखा रहेगा कि कुंभ के समय में वहाँ पे था, उसके पहले भी संतों की परिषद हुई, उसमें बहुत सारे बीजेपी के साइड वाले जो संत है या जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके वहाँ पे भाषण हुए और सभी ने कोशिश की कि ये राम मंदिर का मुद्दा उछला जाए, लेकिन उससे कुछ हाथ नहीं लगा। तो उसके बाद फिर ये जो पुलवामा का अटैक हुआ 14 फरवरी को, जिसमें बहुत सारे मारे गए CRPF के जवान, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया इंडिया द्वारा। इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लैंड पे जो मतलब जो उनका एयर बॉर्डर होता है उसको क्रॉस करके उनके एरिया में बम गिराया। तो उसके बाद जो आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे नरेंद्र मोदी जी का, वो काफ़ी बदल गया था, क्योंकि जब 5 इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया था उसके बाद आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे थे। पर नेहरू से लेके जो राहुल गांधी है, ये पूरा का पूरा जनरेशन के बारे में बार बार उनका हर भाषण में आपको अलग अलग पॉइंट्स दिखता था। और देश में जो भी चल रहा है या जहाँ पे भी जो भी गलत हो रहा है, सारा का सारा उसका ठीकरा वो नेहरू जी पे डालते थे। बताते थे कि अगर नेहरू के बदले वल्लभ भाई पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो देश कितना आगे होता, जबकि सबको पता है कि वल्लभ भाई पटेल का निधन जो है वो बहुत जल्दी हो गया था इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। तो ये सारे जो इलेक्शन के जो भी पैतरे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचे समझे हुए थे। और आपने सुना रहेगा जो वॉरफेयर का जो एक्सपर्ट्स है, जो हिटलर से लेकर आपने जो चाइनीज़ वॉरफेयर के बुक्स है उसमें आपने पढ़ा रहेगा कि ये सब कैसे किया जाता है। तो एग्जैक्टली वही सारा चीज़ इंडिया में दोहराया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन पब्लिक इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि उनके लिए देशभक्ति और नेशनलिज्म सबसे पहले आता है, और जो भी नेशनलिज्म का मुद्दा सामने लाए, जो भी आपके DNA को क्वेश्चन करे, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ चले जाते हो, क्योंकि अगर आप कोई भी सवाल करते हो तो आप एंटी नेशनल या एंटी हिंदू कहलाए जाते हो, आपको सीधा कह दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो माहौल था 4-5 साल का, वो अभी धीरे धीरे आप देखोगे कि वोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बीजेपी काफ़ी जगह पे आएगी, और मेरे ख्याल से इस बार भी मोदी सरकार फिर से पावर में आएगी और नेक्स्ट 5 साल के लिए राज करेगी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है उसमें स्टेट वाइज क्या इक्वेशन होगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट अभी स्टेट्स इलेक्शन में है। मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि लोकसभा का इलेक्शन NDA ही जीतेगा और नरेंद्र मोदी और 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अभी पूरे इक्वेशन चेंज होने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो CM है, जो BJP के CM है, उनके आगे जो अंडर करंट बना है इन कई सालों में, 2-3 सालों में या 5 सालों में, जितने भी जगह पे जो भी ड्यूरेशन के लिए ये सरकारें आई है, तो वो कैसे आगे जाके वोट्स में कन्वर्ट होंगे ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कि ऑपोजिशन यहाँ पे वीकर वोट्स पे क्यों खड़ा है। पहला तो चीज़ ये है कि जब कोई चेहरा सामने आता है कि ये ऑपोजिशन को लीड करेगा, तब जाके लोग उसके सपोर्ट में आते हैं, तब जाके एक कॉमन एजेंडा बनता है, तब जाके वो लोग अपने आप को लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसका फ़ायदा उनको होता है। इस केस में क्या हो रहा है 2019 के, यहाँ पे हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, मायावती जी हो, या फिर मुलायम सिंह जी हो, तो शरद पवार हो, तो पॉलिटिशियंस इतने सारे हैं जो PM बनना चाहते हैं कि ऑपोजिशन में यूनिटी नहीं है, और ये जो ऑपोजिशन का जो वीकनेस है उसका ही फ़ायदा BJP को इस साल फिर से मिलेगा। केजरीवाल ने बहुत ही सफाई से बोला था कि एजेंडा ये नहीं रहना चाहिए कि ऑपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन एजेंडा सिर्फ ये रहना चाहिए कि मोदी जी को वापस पावर में नहीं आने देना है। लेकिन खैर, उनका कोई सुनता नहीं है, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो जो लोगों पे पहले सवाल उठाए थे, जिनको उन्होंने भ्रष्ट करार दिया था, उन सब के साथ उन्होंने बाद में हाथ मिलाया है, तो उनका क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज के डेट में, इसलिए हम लोग ज़्यादा उनके बारे में नहीं बात करेंगे। अपने कल देखा रहेगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 13वां वर्धापन दिन था, उस समय पे राज ठाकरे जी ने बहुत ही उम्दा भाषण किया, बहुत ही सबूतों के साथ उन्होंने BJP का अलग जो चाले है उसको एक्सपोज करने का काम किया। लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये हो चुका है कि मनसे के बारे में भी अभी लोगों को शक है कि ये शरद पवार जी के कहने पे ये सब कर रहा है, या फिर उसका खुद का क्या स्टैंड है, या वो लोकसभा में अगर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती तो फिर क्यों इतना सपोर्ट कर रही है ऑपोजिशन को, या क्यों एंटी मोदी जा रही है। और अगर कोई एंटी मोदी जाता है तो वो कांग्रेस राष्ट्रवादी में या महागठबंधन में है या नहीं, और अगर वो नहीं है तो क्यों उनके साइड से बात कर रहा है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मनसे का भी फिलहाल यहाँ पे इस लोकसभा इलेक्शन में मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखता। उसके बाद आते हैं प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी का जो गठबंधन है उस पर, तो ओवैसी बहुत कॉन्फिडेंट है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनका जो AIIMIM पार्टी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो मुंबई में या बाकी का महाराष्ट्र में जो कोशिश है AIIMIM का कि यहाँ पे सीटें ज़्यादा जीती जाए, या फिर यहाँ पे कैसे अपना होल्ड धीरे धीरे बनाया जाए, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे डाइसी सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि जो प्रकाश अंबेडकर है वो ज़्यादा एम्बिशियस है और बहुत ज़्यादा सीट्स उन्होंने मांग ली है महागठबंधन से, जिसके बाद उनको महागठबंधन में आने से रोका गया और उन्होंने ये थर्ड फ्रंट बना दिया, जिसका हाल ही में एक सभा हुआ और बहुत ज़्यादा जनता वहाँ पे आई थी। तो मुस्लिम्स हो या दलित्स हो, उनका जो वोटों का बंटवारा हो जाएगा उसका फ़ायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। तो एक तरीके से मैं ये बोलूँगा कि ओवैसी को भले ही साउथ में अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर के कारण महाराष्ट्र में पूरा का पूरा जो दलित एंड बीजेपी सॉरी दलित एंड मुस्लिम्स का वोट्स बटेगा, उसके वजह से महाराष्ट्र में भी बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मेरा एनालिसिस है। तो समरी यही है कि मोदी सरकार फिर से आएगी 2019 में और अगला 5 साल राज करेगी, लेकिन स्टेट्स के जो इलेक्शन होंगे इसके बाद, उसमें अभी अलग पार्टीज का सरकार, मिला जुला सरकार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अंडर करंट है वो फार्मर्स में या फिर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें क्लियरली दिखता है। जो लोग अच्छा कमा रहे हैं, जिनका लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उनको मोदी से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। व्यापारियों को GST के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन GST को उन्होंने बाद में ठीक से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, अलग अलग जो स्लैब थे उसको फिर से रेक्टिफाई किया उन्होंने, तो उनका इशू वहाँ पे ख़त्म हो गया और उनको भी धीरे धीरे पता चल गया कि चलो लॉन्ग टर्म में GST बेटर ही है, क्योंकि अलग अलग टैक्सेस भरने की ज़रूरत नहीं है, एक टैक्स में सब हो जाता है। तो व्यापारी जो वर्ग है वो अभी खुश है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो फार्मर्स है उनको जो योजना आई कि साल भर में 6,000 मिलेंगे, उससे हो सकता है कि कुछ वोट्स कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उनके जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है उसका बारे में ये सरकार ने कुछ नहीं किया है, और मैं समझता हूँ कि वो बैकफायर करेगा। एंड सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो अनएम्प्लॉयड यूथ का है, एंड उसका जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। आपने सुना रहेगा, इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि 90 करोड़ नए वोटर्स अभी जुड़े हैं इस साल। तो आप सोच सकते हो कि इतने सारे नए यंग जनरेशन के लोग अभी मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, और उनके पास जॉब नहीं है, तो वो सारा जो वोट्स है वो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि जो एक्साइटमेंट 18 साल के बच्चों में होता है वोट करने का, वो 35-40s का लोगों में नहीं होता, क्योंकि 18 साल के होने का वो इंतज़ार करते रहते हैं और अपना पहला वोट वो देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करेगी, और मैं समझता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ही डिसाइड कर सकती है कि कितना सीट्स ओपोजिशन को देना है। ठीक है, तो गाइज़ ये आचार संहिता तो लगी रहेगी और बहुत सारा उसका उल्लंघन भी होने वाला है आने वाले दिनों में, तो उसके सारे भी अपने को नोट अलग अलग मिलते रहेंगे न्यूज़। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि पंतप्रधान कौन बनेगा, इससे बेटर ये है कि आपका जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका MP कौन बनेगा, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, सही लोगों को चुने, देखिए कि वो अच्छा पढ़ा लिखा है या नहीं, देखिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, देखिए कि वो गुंडा टाइप है या सोबर है, क्योंकि बाहुबली लोगों को वोट देकर आप गलत एग्जांपल सेट कर रहे हो सोसाइटी के सामने। आपको ये देखना ज़रूरी है कि उसका जो पब्लिक रीच है वो क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसने क्या काम किए हैं अब तक। तो ये सब देख के ही आप प्रॉपरली अपना वोट दीजिए, और इम्पोर्टेंट ये है कि वोट करें। अगर आपको आपके कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी पसंद नहीं है, तो आप जाके नोटा को नोटा का ऑप्शन यूज़ करें, लेकिन आपको वोट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का पॉलिटिकल पॉडकास्ट। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, ऐसे ही पॉडकास्ट मैं बनाते रहूँगा। और आपको जो देश की पॉलिटिकल न्यूज़ है उसके ऊपर मेरा एनालिसिस देते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।